मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत अब मैं जो प्री एग्जाम अभी हुए हैं उनके बारे में बातें किया करूंगा, जब तक कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मेरे हाथों में ना आए। इस पर हम लोग बातें करेंगे, विस्तार के साथ बातें करेंगे, बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर बातें करेंगे और साथ ही साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें लेकर के चलेंगे, और इससे पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस बात की आप सब मुझे इजाजत दें। तो सबसे पहले जो दो महत्वपूर्ण खबरें हैं वे आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बात और स्पष्ट कर दूं, और वो ये कि अभी तक मैं जिन आधारों पर खबरों और घटनाओं का चयन करता था वो आधार अब थोड़े से मैं बदल रहा हूं। केवल आधारों को ही नहीं बदल रहा हूं बल्कि जिस तरीके से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता था उनमें भी मैं थोड़ा बदलाव ला रहा हूं, और इस बदलाव को लाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यूपीएससी का संकेत जो मुझे मिल रहा है या जो मैं संकेतों को पकड़ पा रहा हूं उसके आधार पर मैं उनमें परिवर्तन ला रहा हूं। इसीलिए यदि आप कहीं बारीकी के साथ इन चीजों को पकड़ लें, कोई चीज छूट रही हो, कोई चीज आपको अनावश्यक लग रही हो, तो आप ये मान करके चलिएगा कि अभी जो नई जरूरतें दिखाई दे रही हैं उनके कारण इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं, राइट? तो दोस्तों, जो दो खबरें हैं उनमें से एक है जो हमारे तुर्की में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में एर्दोगान की जीत का होना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदे इस पर एडिटोरियल कमेंट किया है, वो एडिटोरियल कमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत ही सरल कमेंट है, शायद आप पढ़ लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं हिंदी में इसका आपको तर्जुमा उपलब्ध कराऊं। सवाल यह है कि मैं इस एडिटोरियल कमेंट को आज क्यों लेकर चल रहा हूं। दोस्तों, इसमें एक प्रश्न उठाया गया है जो बहुत ही मौजूद प्रश्न है। अगर आप थोड़े समय से भी तैयारी कर रहे हो तो जो तुर्की के एर्दोगान हैं इनके बारे में आप जानते होंगे। ये खासकर एक तरह से कह लीजिए कि राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं लंबे समय से। राष्ट्रवाद का मतलब यहां कट्टर राष्ट्रवाद से, राष्ट्र प्रेम से नहीं, मतलब जो एक तरह से कह लीजिए मेडिवल वैल्यूज को महत्व देते हैं, जो इमोशंस को महत्व देते हैं, जो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप जैसी भावनाओं को लेकर के चलते हैं, जो बहुसंख्यक वर्ग है उनके भावनाओं को उकसा करके अपनी राजनीति की प्रतिपूर्ति करते हैं, उनकी अप्रोच इस तरीके की रही है, राइट? अब वो चुनाव में फिर से जीत गए हैं। उनके खिलाफ जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हुए थे वो थोड़े से उदार किस्म के थे, वो थोड़े से उदार, आप यूं कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव अप्रोच के थे, गांधीवादी दृष्टि को लेकर के चलते थे। शुरू में कहा जा रहा था कि शायद वो जीत जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया और एर्दोगान की फिर से जीत हो गई है। और सच पूछिए तो इस जीत ने कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो थोड़े से उदारवादी लोकतांत्रिक देश हैं, संवैधानिक दृष्टि से नहीं, उदारवादी लोकतांत्रिक दृष्टि हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से भले ही कोई लोकतांत्रिक हो लेकिन अगर वास्तव में वो उदारवादी लोकतांत्रिक देश हैं तो इससे थोड़े से चिंतित हैं। चिंतित इस मायने में है कि अब क्या हम लोकतंत्र को सीधे एक चुनावी व्यवस्था मान लें, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से चुनाव जीत जाए तो हम कह दें कि ये लोकतांत्रिक शासक है, या कि लोकतंत्र के कुछ और भी मूल्य होते हैं। मतलब एक ऐसा शासक अगर चुनाव जीत जाता है जिसने संस्थानों को डिमोरलाइज किया हो, जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है उनकी प्रतिष्ठा को गिराया हो, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की हो, जिसने अपने राजनीतिक हितों के लिए कानून बनाए हों, जिसने जो लोकतांत्रिक मूल्य है उन पर प्रतिबंध लगाए हों, यदि ऐसा शासक फिर से चुनाव जीत जाता है तो डेफिनेटली संवैधानिक रूप से तो वो लोकतांत्रिक शासक है, लेकिन क्या सच में यही लोकतंत्र है? आप पढ़ेंगे कि उस एडिटोरियल के फर्स्ट पैरा में ही दिया हुआ है कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे रूस, उसमें नाम गिनाए हैं और आपको इन्हें थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ना चाहिए। रूस, इजिप्ट जिसे आप मिस्र कहते हैं, वेनेजुएला, मलेशिया, नाइजीरिया, जो सैन्य शासन जो खासकर एक तरह से पाकिस्तान का है, सीधे सीधे सैन्य शासन तो नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान, कि ये जो यहां के जो शासक हैं उसी श्रेणी में उन्होंने एर्दोगान को रखा है और फिर ये चिंता व्यक्त की है लोकतंत्र के स्वरूप को लेकर। तो एक लोकतंत्र पर भी इसमें बात की गई है और दूसरा एर्दोगान की जीत को लेकर के जो दुनिया थोड़ी सी चिंतित है उस पर भी एक दृष्टि डाली गई है। कल मैंने आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था, शायद आपके ध्यान में हो और हो सकता है कि आपके ध्यान में न भी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझ सकता हूं कि फिलहाल यदि आपने एग्जाम दिया होगा तो आप किस मानसिकता से गुजर रहे होंगे। आपकी मानसिकता बहुत संतुलित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, लेकिन हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। शुरू में होता है लेकिन धीरे धीरे तो चीजें ठीक ठाक हो ही जाती हैं। जितनी जल्दी आप अपने आप को ठीक ठाक कर लेंगे, अगले साल आप उतनी ही ज्यादा उसका लाभ उठा सकेंगे। खासकर मैं सूखती अमेरिकी नदी नाम के एडिटोरियल कमेंट की बात कर रहा हूं। अमेरिका की एक नदी है कोलोराडो, वो सूख रही है और खासकर अब वहां के जो 7 राज्य हैं उन्होंने आपस में मिलकर के ये फैसला किया है कि हम इस नदी के पानी का अब इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि इस नदी में फिर से जल का प्रवाह आ जाए। कोलोराडो, ये एक नदी का नाम हुआ जो अमेरिका में है। इसके साथ ही साथ अब जिस तरह से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं तो थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़कर के आपको देखनी होंगी। ये राकी पर्वत से निकलती है नदी और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी नदी है और इसके पानी का इस्तेमाल अमेरिका और मैक्सिको दोनों देश के लोग करते हैं और करीब 4 करोड़ लोगों को यह जीवन देती है, यानी कि पानी प्रदान करती है। यह नदी अब सूख रही है, इसका प्रवाह बहुत कम होने लगा है। नदियों के सूखने के कारण क्या है, खासकर कोलोराडो के संदर्भ में जब आप एडिटोरियल कमेंट को पढ़ेंगे तो फिर आगे वो बताया गया है कि किस तरीके से जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों का जल कम होने लगा है। तो सीधी सी बात है, जब सहायक नदियों का जल कम होने लगेगा तो मुख्य नदियों में जल कहां से आएगा। बांध बना दिए गए हैं तो बांध से पानी रुक रहा है और बांधों में पानी कम हो गया है, उनमें भी कम हो गया क्योंकि नदियों में जल का प्रवाह कम हो गया है। तो उसके कारण वहां जो विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर संकट मंडरा रहा है। उस पूरे के पूरे एरिया में ये माना जा रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना तापमान बढ़ गया है, तो तापमान बढ़ने के कारण भी उस नदी के जल का स्तर कम होता चला जा रहा है। ये संकट केवल कोलोराडो नदी की नहीं है बल्कि दुनिया की जो दूसरी नदियां हैं उनकी भी है और यह माना जा रहा है कि विश्व की जो 10 बड़ी नदियां हैं उनके सामने इसी तरह का संकट है। अगर हम अपने यहां की बात करें तो गंगा नदी खतरे में है, कावेरी के बहाव में 40% की कमी आ गई है। ये कम खतरनाक इंडिकेशंस नहीं है। तो दोस्तों, एक एडिटोरियल मैंने आपको दिया था और खासकर मैं इतने विस्तार से इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको ये पता लग सके कि अब आगे की जो आपको तैयारी करनी है किस तरीके से करनी है। मैं सिस्टमेटिक तरीके से इस पर बातें करूंगा, मैं हड़बड़ी में नहीं हूं। आप लोगों के बहुत सारे मेल आए हैं, इतने मेल आए हैं कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि आप सब इतने मेल्स लिखेंगे। एक एक मेल मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि मैंने ही ये मेल लिखे हैं। उसमें आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, भविष्य के प्रति जो आशंकाएं हैं, वर्तमान के प्रति जो निराशा है, जो आक्रोश और खीज है, उन सबको मैं महसूस कर सकता हूं। और सच पूछिए तो मैं महसूस कर ही रहा हूं। कुछ मेल तो इस तरीके के आए हैं कि सर आप क्या बात कर रहे हैं कि अपने अनुभव को लिखे। अभी कोई अपने अनुभव को लिख सकता है कि आप तो सीधे सीधे काम की बात कीजिए और बताइए कि आगे की हम तैयारी कैसे करें। तो ये जो लिखने का जो तरीका है, जो अंदर की जो झुंझलाहट है, इसे मैं समझ सकता हूं कि ये क्यों है, लेकिन आपको अपने को व्यवस्थित तो करना ही होगा, संतुलित तो करना ही होगा। आप ये मान करके चलिए कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए जिस मानसिकता की जरूरत होती है उसका एक लिटमस टेस्ट है कि आप उस मानसिकता में हैं कि नहीं है। क्योंकि जब आप सर्विस में आएंगे तो पता नहीं कितने दौर इस तरीके के आएंगे कि आप बिल्कुल उत्तेजित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुस्से में भर जाएंगे और पता नहीं आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ खत्म कर दो और सबको जेल में डलवा दो और 144 धारा लगवा दो, मार्शल लॉ का ऑर्डर दे दो, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में आएगा। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकेंगे? और अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या जनरल डायर को आप सही ठहरा सकते हैं? नहीं ठहरा सकते। आपको संतुलित होना ही पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी जिसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से कर दी है। तो दोस्तों, खासकर जो इस बार जो प्री के आपके पेपर्स आए हैं उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं। YouTube पर बहुत से एनालिसिस आ रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से अपनी बातें कह रहे हैं और उसमें एक बात बहुत ही कॉमन है कि इस बार यूपीएससी ने बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया है, आपको झटका दिया है। और वो बात अपने आप में सही है। लेकिन इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं, वो ये है कि यूपीएससी ने परिवर्तन तो किया है, लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ अपनी निरंतरता को भी बनाए रखा है। और वो निरंतरता क्या है? वो निरंतरता उसके सिद्धांत की है, उसके प्रिंसिपल्स की है। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, मेरी एक उंगली कट सकती है, मेरा चेहरा थोड़ा सा अभी जैसा है उस किसी कारण से कुरूप हो सकता है, लेकिन सवाल यह कि मेरी रीढ़ की हड्डी का क्या हाल है? और अगर मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक है तो इसका मतलब है कि मामला ठीक ठाक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं इस पर आगे बात करूंगा। तो जहां तक सिद्धांत का सवाल है, सैद्धांतिक रूप से यूपीएससी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन उन सिद्धांतों को जब इंप्लीमेंट करने के लिए आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आते हैं तो उसमें जरूर थोड़े से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, और वो भी ऐसे परिवर्तन नहीं है जिनको कुप अप न किया जा सके, जिन्हें संभाला न जा सके, इतना विश्वास रखिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज है 26 अक्टूबर से शुरू होंगी, 9 नवंबर तक चलेंगी। इसके लिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ऋषभ कुमार यादव ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ऋषभ जी, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, ईमेल लिखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और जो ईमेल आए हैं उनमें से बहुत कम नाम ऐसे हैं जिन्हें मैं छोड़ने की गलती कर सकता हूं। और यदि मैं सबके नाम लेने लगूं तो मुझे लगता है कि लगभग 60-70 नाम तो हो जाएंगे। आप ही मुझ पर नाराज होंगे कि क्या सर आप नाम गिना रहे हैं, छोड़िए अब इसको। तो इसीलिए आपकी नाराजगी से बचने के लिए फिलहाल मैं नाम नहीं गिना रहा हूं, लेकिन जिन्होंने भी मेल लिखे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नाम न लेने के बावजूद उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।